ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता आठवां अध्याय और श्लोक संख्या है 5। अध्याय का नाम है, क्या नाम है अध्याय का? भगवत प्राप्ति। यस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस तरह से है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवराम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवराम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। अंत काले च मामेव स्मरणम उक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। इसका अनुवाद है, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी मद्भाव को प्राप्त होता है, जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव यानी कि मद्भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुदा अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावना मत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोर ही सहिष्णुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरो श्री उत्तपद कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल तरुभयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण जय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साचरणे प्रचारं कृतवान् साधु भागवत।
हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है आज का, जिसमें भगवान हमें बता रहे हैं कि कैसे हम इस भव बंधन से छूट सकते हैं। आगे इसके अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसे जो व्यक्ति जिस तरह का चिंतन करता है उसी तरह के शरीर को प्राप्त होता है वो। इसके अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अगर आप भगवान का स्मरण नहीं करोगे तो जिस चीज का भी स्मरण करोगे उसी तरह का शरीर मिल जाएगा। इसी तरह से 84 लाख तरह के शरीर हैं, 84 लाख तरह के भगवान ने शरीर बनाए हैं। तो जिस तरह का भी हमारा लास्ट में आखिर में विचार होते हैं उसी तरह का शरीर हमें मिल जाता है। जैसे आपको पता है उदाहरण के लिए भरत महाराज थे, भरत महाराज अपना सारा राजपाट छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था उन्होंने, छोटी उन्हीं के नाम पे सारा हमारा भारतवर्ष का नाम पड़ा है। कितने महान राजा थे वो भरत महाराज, कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही, पंखों की जरूरत है क्या, एसी चल रहा है ना, है ना, ये पंखे बंद कर दो पंखे, तो छोटी सी उम्र में ही उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया था और जंगल में जाके वो तपस्या कर रहे थे। और आखिर वक्त में क्या है, उनको एक हिरण से आसक्ति हो गई, एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई, उसको पालते थे, पोसते थे, खिलाते थे। तो आखिर में जब उनकी मृत्यु आई तो हिरण के बारे में सोच रहे थे, तो उनको कौन सा शरीर प्राप्त हुआ, हिरण का शरीर। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत काले आखिर में जिस चीज को, जिस भाव को स्मरण करते हुए तो त्यागोगे इस शरीर को, मतलब भगवान कह रहे हैं अगर मेरे 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 को स्मरण करते हुए त्यागोगे तो फिर कोई संशय नहीं है कि मेरे ही स्वभाव को प्राप्त होगे, मतलब फिर हमें भगवान जैसा शरीर मिलेगा। फिर भगवान का शरीर कैसा है, है? सच्चिदानंद, भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। हमारे में और हमारे शरीर में अंतर है, हमारी आत्मा तो सच्चिदानंद है लेकिन हमारा शरीर जो है वो भौतिक है ना? हम ये मेटीरियल जो भौतिक जो तत्व है उससे हम कवर हो गए हैं, आच्छादित हो गए हैं हम लोग। और फिर जो हमारा शरीर है वो आध्यात्मिक होगा, जो आत्मा है, आत्मा और शरीर में फिर अंतर नहीं रहेगा, जिस तत्व का आत्मा है वही शरीर मिलेगा हमें, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। और हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना चाहिए क्योंकि हम इसी कारण से सारी मुसीबतें हैं, क्योंकि हम भौतिक शरीर में फंस गए हैं। जैसे मछली जो है जब जमीन पे आ जाती है, मछली को अगर आप तश्तरी में रखो और उसको सारी सुविधाएं दो, और तश्तरी भी कौन सी, सोने की हो, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई, उसमें आप उसको लेटाओ, साथ में नौकर चाकर, सारा एयर कंडीशन, सब पूरे सारे कंफर्ट दो उसको भौतिक, वो सुखी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। इसी तरह से हम भी फंस गए हैं, हम आध्यात्मिक हैं लेकिन ये भौतिक वातावरण में फंस गए हैं, और इसी कारण से हम तो हमें आध्यात्मिक वातावरण में जाना है और उसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो इस बंधन से फिर छूट नहीं पाएंगे, फंसे रहेंगे हम। अभ्यास करते 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 अभ्यास जब हम करते रहेंगे तो फिर ऐसा होगा कि हम आखिरी समय में भी, आखिरी समय जो है मृत्यु का समय जो है बहुत ही कष्टकारक है, बहुत कष्ट का समय है। तो इसीलिए हमें, इसीलिए फिर भगवान क्या इससे अगले श्लोक में एक और बात बताएंगे, भगवान क्या कह रहे हैं, तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कह रहे हैं अतएव हे अर्जुन तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही साथ युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सको। तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते हुए हमें भगवान का स्मरण करना है, ये है। क्योंकि अगर हम काम करते हुए इस भौतिक संसार में कार्य करते हुए अगर भगवान का नाम स्मरण नहीं करेंगे, उस समय इतने कष्ट होगा, तब कैसे हम कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान इसको क्लियर कर रहे हैं कि ये नहीं कि आप सब धंधा छोड़ दो, काम छोड़ दो और सिर्फ भगवान का नाम जपना शुरू कर दो, ये अभ्यास नहीं होगा। अंत समय भगवान की याद हमें तभी आएगी, अंत समय हम भगवान को याद तभी कर पाएंगे जब सभी परिस्थितियों में इस जीवन में हम भगवान को याद कर सकें। बीमारी में भी हमें भगवान को याद करना है, तो ये अभ्यास से संभव है, अभ्यास से ये संभव है। नित्य जो भी चीज हम प्रैक्टिस करते हैं, रोज 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 जो हम चीज करते हैं उसका फिर हमें अभ्यास हो जाता है, उसकी आदत सी पड़ जाती है फिर हमें। जैसे एक व्यक्ति था, उसके घर में गाय ने बच्चिया को जन्म दिया। अब उसका घर था छोटा, तो घर में जगह नहीं थी, बच्चिया को कहाँ रखे, तो घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जगह, तो वो क्या करता था, सारा दिन तो वो गाय के साथ रहती थी बच्चिया, जैसे भी काम चल जाता था, रात को तो सबने सोना है, तो क्या करता था, बच्चिया को उठा के और वो सीढ़ी से चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे उसको रख देता था। रोज रोज ऐसे करता था, रोज रोज करते 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 लगभग साल बीत गया। साल बीतने के बाद उसका एक मित्र उसके घर आया मिलने, उससे तो उसने उस मित्र को कहा, देखो ये बच्चिया है ना, वो कहते हैं ये बच्चिया है, ये तो मुझे गाय नजर आ रही है। कहते देखो, वो उसको उठा लेता है और उठा के फर्स्ट फ्लोर पे रख देता है जाके। तो उसका दोस्त बड़ा हैरान हो जाता है, कहते है इतनी बड़ी गाय को इसने उठा लिया, क्या अंतर था, क्योंकि वो रोज 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 अभ्यास कर रहा था, उसको पता ही नहीं लगा कब बच्चिया जो है गाय बन गई। समझ में आई है बात, नहीं आई। इसी तरह से जब हम हर स्थिति में अभ्यास करेंगे, हर रोज नित्य हर स्थिति में जब अभ्यास करेंगे, तो मरते हुए जो बहुत कष्टदायक स्थिति होगी, आम आदमी के लिए असंभव होगा भगवान का नाम लेना, असंभव। एक व्यक्ति थे, वो हमारे लाइफ मेंबर थे, तो उनकी जब आखिरी समय आया तो उनके बच्चों ने बुलाया कि आइए कीर्तन करिए, हमारे पिताजी का आखिरी समय आ गया है। वो घर गए, हमें उनके कीर्तन कर रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं कि नाम लो, नाम नहीं लिया जा रहा। क्या कह रहे हैं बच्चों को, वो ऐसे कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे क्या है।
बड़ी देर बाद समझ आई क्या कह रहे हैं कि वो जो अलमारी में चाबियां पड़ी हुई ना वो चाबियां दे दो मुझे, उसमें घर की भी चाबियां हैं दुकान की भी चाबियों का गुच्छा दे दो।
तो चाबियों का गुच्छा उनको दे दिया,
चाबियों का गुच्छा यहाँ रख के
प्राण छूट गए।
समझ आई बात, कुछ
अभ्यास नहीं किया था।
अगर अभ्यास नहीं किया सारी उम्र तो अंत काले नहीं होगा। माँ में वही स्मरण मुखवा, स्मरण नहीं होगा भगवान का, स्मरण नहीं होगा असंभव है। वो तो जैसे हम अजामिल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, अजामिल की कथा भागवतम में आती है कि आखिरी समय उसने नारायण 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 बोला, जो उसके बेटे का नाम था, तो भगवान आ गए। लेकिन हमें समझना चाहिए कि उसने भी बचपन में पहले प्रैक्टिस की थी, अभ्यास किया था उसने, वो भूल गया था थोड़े समय के लिए। तो जिसने कभी भी अभ्यास नहीं किया वो सोचे कि हाँ भगवान तो ये कह रहे हैं कि आखिरी समय भगवान का नाम लेना है, तो सारी उम्र क्या मुसीबत में पड़ने की जरूरत है। सारी उम्र खाओ पियो ऐश करो इंजॉय करो, मर्जी आए जो करो, पिक्चर देखो ये करो वो करो, जाओ पार्टियों में जाओ, क्या ऐसे पागलों की तरह हरे कृष्णा करने की। आखिरी समय हरे कृष्णा बोल देंगे बस, आखिरी समय जो है भगवान को याद कर लेंगे। यही तो बात है, ये मूर्खता है। आप सोचो अगर सारी किसी ने सारा साल पढ़ाई नहीं की, आखिरी समय एग्जाम के प्रश्न उत्तर दे सकता है क्या? नहीं दे पाएगा, असंभव है। उसको अगर पास होना है तो सारी उम्र वो सारी साल उसको पढ़ाई करनी चाहिए, तभी संभव है। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ये भगवान ये तीन श्लोकों में अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं कैसे जो है काम करते हुए हमें भगवान के नाम को याद करना है। इसके लिए हमें बैलेंस करना है, शुरू शुरू में तो अलग समय निकालना है, कुछ समय हमें अलग निकालना है ताकि हम भगवान का, जैसे जो भगवान के नामों का जप करने का 16 माला का नियम है वो अलग से करें हम, उसमें ये अप्लाई नहीं होता काम करते रहो नाम जपते रहो, मतलब काम करते हुए 16 माला करनी है, नहीं फिर तो अभ्यास नहीं होगा, भगवान का याद नहीं आएगी फिर ना। तो कुछ समय हमें अलग से निकालना है जब हम सिर्फ भगवान के नाम के लिए समय निकाल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला जप करनी है, लेकिन प्रभुपाद जी ने 16 माला जप करने के लिए अलग से समय निकालने के लिए कहा है। वैसे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं 24 घंटे जप करना है हमें, 24 घंटे जप तभी हम कर सकते हैं जब हम 2 घंटे अलग से समय निकालें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, कंसेंट्रेट करें, फोकस करें। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर जो है बाकी समय में हम जो है फिर हम ऑटोमेटिकली जो है हम फिर भगवान को याद कर पाएंगे, काम करते हुए सब काम करते हुए हमारा दिमाग जो है हमारा जो मन है वो भगवान की तरफ जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं उसका जो समझ आने वाला उदाहरण है, प्रभुपाद जी देते हैं भौतिक उदाहरण के, भाई जैसे कोई स्त्री है उसका प्रेमी है कोई, तो वो प्रेमी के बारे में सोचती रहती है, लेकिन घर के जो काम है बड़े ध्यान से करती है ताकि किसी को पता न लगे कि उसका ध्यान कहीं और है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि हमें भी अपना जो मन है जो बुद्धि है, यहाँ जैसे बता रहे हैं भगवान खुद कह रहे हैं कि हमें क्या है, अतएव अर्जुन हे अर्जुन तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही साथ युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। मन और बुद्धि को भगवान में हम स्थिर करें, मन और बुद्धि हम भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में हम सोचते रहें। वो तभी होगा जब हम जो कुछ समय जो है 24 घंटे में से भगवान के लिए अलग से निकालेंगे, जप करने के लिए, भगवद गीता को पढ़ने के लिए, भागवतम को पढ़ने के लिए अलग से निकालेंगे। 24 घंटे में से हमारा कुछ समय अलग हो इसके लिए, अगर हम अलग से समय नहीं निकालेंगे तो ये संभव नहीं होगा। फिर कभी भी संभव नहीं होगा कि हम काम करते रहे नाम जपते रहे, नहीं ये होगा नहीं, क्योंकि अभी हम एक बीमार जैसी स्थिति में पड़ गए हैं। बीमार हैं हम, ओरिजिनल स्थिति जो है हमारी स्वस्थ जो है स्थिति वो है आध्यात्मिक, लेकिन हम ये भौतिक बंधन में पड़ चुके हैं अभी हम। तो इसीलिए हमें अलग से समय निकाल के अभ्यास करना है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के नामों का जप जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक करें। सुबह हमें समय निकालना चाहिए जप करने के लिए, सुबह का समय सबसे अच्छा है क्योंकि रात भर हमने थकावट खत्म हो जाती है हमारी, सुबह फ्रेश होता है और वातावरण भी बिल्कुल सात्विक होता है। सुबह के समय हमें जप करना चाहिए। जैसे हम शिक्षा अष्टकम में पढ़ते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम, पहला शिक्षा अष्टक का जो श्लोक है, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो 7 तरह के लाभ होते हैं हमें। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त का मार्जन होता है, हमारे जो चित्त है उसका मार्जन होता है, धूल है जो उसके ऊपर जमी हुई वो मिट्टी है। जैसे शीशा होता है शीशा, दर्पण है दर्पण, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो दर्पण है उसके ऊपर धूल जमी हुई है, कई जन्मों की धूल जमी हुई है और इसके कारण जो है हम अपने आप को देख ही नहीं पाते। जब हम चित्त में झांकते हैं तो हमें क्या नजर आता है, धूल, धूल नजर आती है। वेरी गुड। जैसे अगर शीशा है, शीशे के ऊपर आप बहुत मोटी धूल जमी हुई है, धूल की परत जमी हुई है, तो शीशा नजर आएगा आपको? तो शीशा नहीं नजर आएगा, तो आपका अपना चेहरा कहाँ नजर आएगा, उसमें धूल ही नजर आएगी सिर्फ। तो इस तरह हम भी जब अपने चित्र में झांकते हैं तो क्या है, धूल ही धूल, मेटीरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं नजर आती है सारी, भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ, ये हो जाए वो हो जाए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बस इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो उसका मार्जन होता है जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं ध्यानपूर्वक, फिर हम अपने आप को देख सकते हैं। भव महादावा अग्नि निर्वापनम, ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर चला हुआ है, दावानल है, आग लगी हुई है, ये खत्म होती है। भगवान का जब हम नामों का जप करते हैं तो ये खत्म होती है। इस तरह से सात बेनिफिट्स चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। लेकिन ये हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का अम्बुद्धि जो है, जो समुद्र है, उसकी वृद्धि होती है। लेकिन हम तो जप करते हुए भी फिर आनंद को प्राप्त नहीं होते ना, फिर भी दुखी रहते हैं हम, फिर दुखी दुख चिंताएं डर घेरे रहते हैं हमें। नहीं तो नहीं है ना कि आनंदाम बुद्धि वर्धन, हमेशा हम खुश रहें, हमेशा हम नाचते रहें कूदते रहें, हमेशा खुश रहें, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या कारण है जो भगवान कह रहे हैं, खुद चैतन्य महाप्रभु खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि सात तरह के ये जो है बेनिफिट होते हैं भगवान के नामों का जप करने वाले को, तो हमें क्यों नहीं आते फिर वो? क्या कारण है? हाँ, एक कारण ये है, हम ठीक से जप नहीं करते, यही कारण है। हम लोग अपराध युक्त जप करते हैं, अपराधों से बचते नहीं है। और अपराधों से जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो अपराध है वो ये है कि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। जप करते हुए हमारा ध्यान जो है भटक जाता है सारी दुनिया में, और फिर हमें पता नहीं है कि क्या चीजें जो है हमारे जीवन में बाधक है और क्या चीजें अनुकूल है। हम जो भक्ति में बाधक चीजें हैं उनको अपना लेते हैं, उनको अपना लेते हैं। जैसे अगर मान लो आप आग जला रहे हो और साथ में पानी भी डालते रहो उसको गीला कर, यहाँ से उसको आग जला रहे हो और थोड़ी देर बाद जाओ एक कटोरी पानी डाल दो उसके ऊपर, कभी आग जलेगी जीवन भर? यही हाल हमारा होता है। हम जप करते हैं वो समझ लो जैसे आग जला रहे हैं हम अपने अनर्थों को, अपने सारे जो भगवान कह रहे हैं चित्त का मार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं, सब बेनिफिट लेने का प्रयास कर रहे हैं जब आग जला रहे हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये तो बाधक है, ये चीजों से हमें बचना है, वो चीजें हम ले आते हैं जीवन में, मतलब पानी डाल देते हैं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए हमारे जीवन में कि क्या चीजें जो है हमारे जीवन में बाधक है। तो सबसे बड़ी बाधा ये है कि मेटीरियल टेम्पोरेरी चीजों के प्रति हम अटैच रहते हैं, जो चीजें टेम्पोरेरी हैं, जो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, उसके प्रति हम बहुत अटैच रहते हैं। धन संपत्ति, रिश्तेदार, बच्चे, ये सब टेम्पोरेरी है, परमानेंट थोड़ा है, थोड़ा हमारे साथ रहने हमेशा, लेकिन इनसे बहुत अटैच रहते हैं हम। ये बाधा है, ये एक बाधा है हमारे भगवान की तरफ जाने में, ये बाधा है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि कौन सी चीज जो है बाधा है और कौन सी नहीं। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो उसी तरह से है कि जैसे कोल्लू का बैल है, वो चक्कर लगाता रहता है, मेहनत करता रहता है, वो जीवन भर चलता रहता है ना, पता नहीं है वो, लेकिन एक इंच भी आगे नहीं जाता। तो इसलिए जप करते हुए हम इन चीजों को ध्यान से हम समझें कि क्या जो चीजें बाधक हैं, अपराध क्या हैं, जैसे माता जी ने बताया बहुत अच्छा, अपराध क्या है, 10 तरह के अपराध हैं, उनसे बचे हम। सबसे बड़ा अपराध जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है, पता आपको क्या है, कौन सा है सबसे बड़ा अपराध 10 अपराधों में? सबसे बड़ा अपराध क्या है? हाँ, वेरी गुड, भक्तों की निंदा करना, भक्तों की बुराई करना, भक्तों को क्रिटिसाइज करना, खासतौर से उन भक्तों को जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है भगवान के नाम प्रचार प्रसार के लिए, उनकी हम निंदा ऐसे कर देते, एक सेकंड नहीं लगाते हैं निंदा करने में। कभी भी हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। साधु निंदा नहीं करनी हमें, क्योंकि साधु जो है वो भगवान के बच्चे जैसे हैं, भगवान के अपने हैं वो। तो अगर आप मान लो किसी की आप फेवर लेना चाहते हैं और उनके बच्चे को आप मार रहे हो, या बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, बच्चे की बुराई कर रहे हो, या उसके खास व्यक्ति की आप बुराई कर रहे हो, तो उसकी फेवर मिलेगी आपको? सिंपल बात है। तो भगवान के नाम जो है वो भी एक पर्सन है, जैसे भगवान एक व्यक्ति है, ऐसे भगवान का नाम जो है वो भी एक पर्सन है, पर्सनैलिटी है उसकी भी। वो नाराज हो जाता है उस व्यक्ति से, बिल्कुल नाराज हो जाता है जो व्यक्ति जो है उनकी निंदा करता है, जो उनके अपने हैं, जिन्होंने भगवान के नाम के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन दे दिया है, उनकी आप निंदा करते हो। वो सोचना चाहिए, हम कई बार ऐसे हमें पता भी नहीं लगता कि हम निंदा कर जाते हैं, इतना हमारे जीवन में ये आ गई है, क्योंकि निंदा करना इतना आसान है, तो सब कोई कर रहे हैं निंदा, है ना। ये जो अखबार है, अखबार में है क्या निंदा चुगली? अखबार क्या है, निंदा चुगली से भरी हुई है क्या उसमें? अखबार पढ़ने की कितनी आदत है हमें, नहीं। टेलीविजन में क्या है, निंदा चुगली? टेलीविजन है क्या? निंदा चुगली है उसमें, और क्या निंदा ही तो है, और है क्या? इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। टेलीविजन देखने की हमें बहुत आदत है, नहीं है? तो अगर हम टेलीविजन देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, कहाँ से हमारी फिर आदत जाएगी? इसीलिए इन चीजों से हमें परहेज करना है। तो तब हम जब नाम अपराधों से बच के जब हम जप करेंगे, तब हमें जो है ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, और तब फिर जो है हम आखिरी समय भी भगवान का नाम ले सकते हैं, तब हमारा मनुष्य जीवन लेना जो है वो सफल हो जाएगा। और एक जो है, जो इसमें एक और बताया है किसके कारण हम नहीं ले पाते, ये बेनिफिट्स नहीं ले पाते, उसको कहा है तत्व विभ्रम। तत्व के बारे में जानकारी नहीं है हमें। तत्व के बारे में क्या मतलब, कि हम ये चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं, हमारा मतलब इनसिग्निफिकेंट का क्या कहेंगे हिंदी में,
उन्हें हिंदी वाले पर
किसी को भी नहीं आता,
तुच्छ मतलब
तुच्छ, जैसे वैल्यू नहीं है जो बिल्कुल तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट का मतलब तुच्छ, तुच्छ चीज होती है ना, हम ध्यान भी नहीं देते उसकी तरफ, ये हमारी स्थिति है। लेकिन इस स्थिति को हम स्वीकार नहीं करते और उसके कारण क्या है, हम कोई कहते हैं, किसी को कहते हैं ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरा दुश्मन है, जो तो हमारे फेवर करता है, जो हमारी तरह से चलता है ये मेरा दोस्त है, और जो हमारे अगेंस्ट हो जाता है वो मेरा दुश्मन, दुश्मन और दोस्त पैदा कर लेते हैं हम। कारण क्या है कि हम अपनी स्थिति को नहीं समझते कि हमारी स्थिति तुच्छ है, हम समझते हैं कि नहीं हम तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हम हैं सारी दुनिया के सेंटर जो है हम हैं, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है सेंटर में, हम सब इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ है बिल्कुल। हमारा क्या है, हमारा जो साइज है वो है जो बाल होता है, बाल उसका जो टिप होता है, बाल का जो ऊपर नोक होती है उसको 10,000 भागों में बांटो तो 10,000वां भाग जो है वो है हमारी आत्मा का माप बताया है, कोई माप भी नहीं सकता, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इसको माप सके। इसीलिए जब डिसेक्शन करते हैं शरीर का तो कहीं आत्मा नहीं नजर आती, शरीर को जब चीर फाड़ दो कहीं आत्मा, कहते हैं कि हृदय ही अर्जुन तिष्ठति, हृदय की जगह पे आत्मा का वास है, लेकिन हृदय को तो आजकल ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, हृदय को यहाँ से निकाल के दूसरे के हृदय में डाल देते हैं, तो फिर आत्मा का क्या होता है, वो भी ट्रांसप्लांट हो जाती है, फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति हो जाना चाहिए, अगर आपका देखा हृदय का किसी का ट्रांसप्लांट हो जाता है तो भी तो व्यक्ति तो दूसरा हो जाना, दूसरा तो नहीं होता, हो व्यक्ति तो वही रहता है। अभी बताएंगे इसके बारे में, कहने का मतलब है कि ये एक तो सूक्ष्म है और दूसरा तत्व भी अलग है, ये अलग तत्व है, ये भौतिक नहीं है ना, आध्यात्मिक तत्व है, ये भौतिक में तो ये मिल गया है लेकिन ये है आध्यात्मिक, सूक्ष्म है और आध्यात्मिक है। तो इतना सूक्ष्म होते हुए हम कितना अपने आप को समझते हैं, मैं कितना करते रहते, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने ये कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं भी उसको मजा चखा के रहूंगा, और समझता क्या है अपने आप को, मेरे भी इतने बड़े कॉन्टेक्ट हैं, मेरे जो मामा जी हैं वो DIG हैं, उसको पता है DIG पुलिस हैं, कितना कितने हम अपने आप को पता नहीं कहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ा के खड़े हो जाते हैं। ये है विभ्रम, तत्व विभ्रम। आप अपनी स्थिति को समझ नहीं रहे हमारी स्थिति क्या है, उसके कारण फॉल्स ईगो के कारण अहंकार आ जाता है हमारे में और बस सारा जो हमें फल प्राप्त होना है वो खत्म। अहंकार में होके हम जो है वो जप करते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरनाद अपि सुनी चेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। क्या मतलब है, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा, हाँ बताओ 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 जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तरनाद अपि सुनी चेन, अपने आप को तृण जो है उससे भी नीच समझे, सुनी चेन तिनका कितना, सड़क में पड़ा हुआ तिनके की कोई वैल्यू है, उससे भी अपने आप को कम समझे हम। तरोर अपि सहिष्णुना, और जितना पेड़ सहनशील होता है उससे ज्यादा सहनशील हो हम। और अमानिना मान देन, अमानिना मतलब अपने मान की कभी भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें, आशा नहीं करें, अपने मान की कभी भी आशा नहीं करें, और दूसरे को हमेशा मान दें। कीर्तनीय सदा हरि, इस तरह से जब हम रहेंगे तो हम कीर्तन हमेशा कर सकते, वो है कीर्तन, वो कीर्तन जो है हमें लाभ देगा। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तीसरे अपने शिक्षा अष्टक के श्लोक में, तीसरे श्लोक में ये कह रहे हैं इस तरह से हमें कीर्तन करना है विनम्र भाव से। इस तरह से जब हम जप करेंगे तो हम देखेंगे कि हम फिर प्रगति कर रहे हैं अपने आप, फिर हम प्रगति कर रहे हैं एक से दूसरे से तीसरे, फिर ये सारे गुण आएंगे, जैसे आगे भगवान बोल रहे हैं कि नयनम गलद अश्रु धारया वदनम रुद्रुद गदगद हृदया गिरा। नयनम, नयन से ऐसे आंसू निकल रहे हैं जैसे पिचकारियां निकल रही हैं वर्षा के समान, गलद अश्रु धारे, अश्रु की धारा बह रही है। ये आता है, होता है हमें कहाँ होता है, उसका कारण यही है कि हम तरनाद अपि सुनी चेन तरोर अपि सहिष्णुना, उस भावना से हम जो है जप नहीं करते, हम अपनी अपने तत्व अपने को हम समझ नहीं रहे हम है क्या, हम अपने आप को भगवान समझे बैठे हैं। हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद देते रहना चाहिए, हमेशा हर हालात में हमें भगवान का धन्यवाद देना है, भगवान बहुत शुक्र है तुम्हारा, बहुत शुक्र है, क्योंकि इस बात को हमें समझना है कि जो भगवान करते हैं वही ठीक है। जैसे कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट, कहते हैं ना, सुना आपने, पहला है बॉस इज ऑलवेज राइट, फिर दूसरा है कि इफ समटाइम्स बॉस इज नॉट राइट, तीसरा है देन रेफर टू नंबर वन। नहीं समझा कि मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट, ये कभी होगा ही नहीं कि बॉस कभी राइट नहीं है, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इसी तरह से भगवान जो है हमारे बॉस हैं, वो जो करते हैं वो धर्म है, धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवत जो जिसमें भगवान खुश है वो है धर्म, धर्म का मतलब ही यही है कि जिसमें भगवान खुश है, ये जो है तत्व है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान को समर्पित भाव से, भगवान जो तू कर रहा है तू अच्छा कर रहा है, वो ग्रेटफुल रहना है हमेशा। अगर हम भगवान को ग्रेटफुल नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, हम ग्रेटफुल, अगर भगवान को हम ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, भगवान को हमेशा कृतज्ञ नहीं रहेंगे, तो हमारा क्या हाल होगा? हम महामूर्ख बन जाएंगे। कैसे? जैसे आपने वो कथा सुनी है ना, मूषका पुनः मूषका भव, सुनिए किसको आती है? सुनो 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 सुनो। माइक दो, माइक कहाँ है? वो वाला माइक कहाँ है? वो वाला माइक नहीं है, कॉर्डलेस माइक नहीं है। तो कॉर्डलेस माइक कहाँ है? हैं, कॉर्डलेस माइक देना ना, देखो बाहर होगा माइक लेके आओ कॉर्डलेस माइक। आपको आती है कथा? पूरी आती है? सुनाना शुरू करो। हाँ वेरी गुड। हाँ
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हाँ वो आ गया, वो वाला वो आ गया, आ गया। चलो हाँ,
कहती है मेरे पीछे चीता पड़ा है।
हाँ।
तो वो कहती है चलो ठीक है तुम चीता बन जाओ। जब वो चीता बन जाता है ऐसे बहुत भूख लगती है, तो वो साधु को ही कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर साधु गुस्से में आकर क्रोधित होकर कहते हैं कि अब तुम फिर से चूहा बन
जाओ। यस, सुनाया ना, वेरी गुड। क्या बात। तो ये है, इसका कहानी का नाम है मूषका, उनको दे दो, उनको दे दो। मूषका पुनः मूषका भव। वो देख भाई, साधु की कृपा से तू कहाँ चूहा था छोटा सा, कहाँ तुझे शेर बना दिया है मैंने, अब मुझे ही खाएगा तू। वेरी गुड। मूषका पुनः मूषका भव, फिर चूहा बन जाता है शेर से। तो इस तरह से हम जब भगवान से लड़ेंगे, भगवान के या भगवान के भक्तों की निंदा करेंगे, तो हमारा भी वही हाल होगा। और अगर भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, उनसे हम इंस्ट्रक्शन लेके आगे चलेंगे, तो हम शेर बन जाएंगे। शेर शेर मतलब कोई डर नहीं, निडर हो जाएंगे। निडर की तरह घूमेंगे इस संसार में, कोई डर नहीं है हमें। चूहा है वैसे, तो चूहे हैं हम, शेर बन जाएंगे हम भगवान की सानिध्य में आके। तो इसलिए हमेशा भगवान को ग्रेटफुल रहना, भगवान के हर हालात में हमें भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे तो इतने गलत कर्म थे, इतने पता नहीं पिछले जन्म में क्या गलत कर्म किए हैं, लेकिन तेरी कितना कृपा है कि अभी भी मुझे तूने बचा के रखा। और सबसे बड़ी कृपा है कि अपने नामों का जप करने का तुम मुझे मौका दे रहे हो, अपने भक्तों का संग दे रहे हो, अपना दर्शन दे रहे हो भगवद गीता के रूप में, भागवतम के रूप में। कितनी कृपा है, मैं तो इतना पापी हूँ, मेरा तो कोई ऐसा पुण्य है ही नहीं कि मुझे ये चीजें मिले। ये तो तेरी ही कृपा है, सिर्फ तेरे भक्तों की और तेरी कृपा है। इस भाव से जब हम भक्ति करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, और तब फिर ये संभव होगा जो भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। फिर हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो समय थोड़ा सा बचा है अभी, आप लोगों को प्रश्न है तो पूछिए पूछिए पूछिए। सुषमा जी, सुषमा आ रहे हैं माता जी। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसे है कि जैसे हमें भगवान कह रहे हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि आत्मा जो है हृदय से, हृदय वाली जगह पे रहती है। तो जैसे मान लो हमारा उदाहरण के लिए हम मकान बना रहे हैं, मतलब हमारा अपना मकान है तो उसको हम तोड़ के रिनोवेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मकान के साथ हम भी टूट जाएंगे, हम तो बाहर चले जाएंगे ना मकान से। तो इसी तरह से आत्मा जो है, जब आप ट्रांसप्लांट, आत्मा अलग हो जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, आत्मा अलग रहती है, समझ गए। आत्मा उस जगह में रहती है, आत्मा इसका मतलब नहीं कि हार्ट के बीच में रहती है, हार्ट की मसल्स में कहीं रहती है, और हार्ट को लेके जाएंगे तो आत्मा भी चली जाएगी। इट इज नॉट पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट वाली जगह भी जहाँ हार्ट होता है उस जगह में रहती है, समझ आ रहा है। जैसे हम इस ऑडिटोरियम में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑडिटोरियम की दीवार में घुसे हुए हैं कि दीवार टूटेगी तो हम भी टूट जाएंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो आत्मा भी उस जगह पे रह रही है, आत्मा तत्व अलग है। आत्मा को ये नहीं कि वो हार्ट, हार्ट को जब हटाते हैं तो आत्मा रहती है वहीं पे, उस जगह पे रहती है, जो अलग तत्व है वो, ठीक है। तो आत्मा नहीं जाती, जब हम हार्ट ट्रांसफर करते हैं सिर्फ हार्ट जाता है, उसका हार्ट आता है, आत्मा अलग वहीं रहती है दोनों। और बताओ, और किसी का प्रश्न? हाँ पूछिए, माइक दो माइक।
बुद्धि से भी ऊपर होंगे प्रभु जी, जैसे भगवान जी बताए।
तो क्या कह, बुद्धि से ऊपर तो
इंद्रिया से परे।
आपका मतलब है कि बुद्धि जो है वो यहाँ होती है?
नहीं
नहीं नहीं, तो आपका कहने का मतलब है कि बुद्धि यहाँ होती है, ये कहने का मतलब, यहाँ बुद्धि होती है? तो ये तो ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं ना कि ब्रेन के कारण बुद्धि होती है, और ये सच बात नहीं है। बुद्धि जो है इंटेलिजेंस का, ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमें समझना है। ये साइंटिस्ट जो कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति था, ये जोक है क्लास से लगा आपको हंसाने के लिए, सुनिए। एक व्यक्ति था, उसको बायोलॉजी में डिमॉन्स्ट्रेटर होते हैं, मतलब पोस्ट होती है डिमॉन्स्ट्रेटर, मतलब सिखाते हैं बच्चों को। तो डिमॉन्स्ट्रेटर की पोस्ट के लिए उसका इंटरव्यू था, तो उससे पूछा गया कि बताओ नी ज्वाइंट कहाँ है। तो उसने कहा सर ये रहा नी ज्वाइंट, उसको फेल कर दिया। इसको ये नहीं पता नी ज्वाइंट कहाँ है, नी ज्वाइंट मतलब घुटना, पता नहीं नी ज्वाइंट कहते हैं, नी ज्वाइंट। आजकल तो नी रिप्लेसमेंट भी बहुत चलती है, तो जानते होंगे। उसको बाहर निकाल दिया। फिर दूसरा आया, उससे भी पूछा बताओ नी ज्वाइंट कहाँ है, उसे टखने बता दिए, कहते हैं ये है नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट ही नहीं पता, ये क्या बायोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेटर बनेगा, जाओ। फिर सरदार जी आते हैं, अब कोई सरदार तो नहीं है, एक सरदार जी आते हैं, सरदार जी से पूछते हैं वही क्वेश्चन, सरदार जी बताओ जी नी ज्वाइंट कौन सा है। वो कहते हैं जी ये राजी नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट। वो कहते हैं अच्छा बड़े तेज हो आप, आपने कैसे बता दिया ये। कहते जी जब किडनी का कमाल है ये, सरदार जी देना। तो इसी तरह से ये हमारी गलत फहमी है कि बुद्धि यहाँ होती है, कई नहीं नहीं ये फैक्ट बता रहा हूँ। कई ऐसे रिसर्च में देखा गया कि उनका ब्रेन ही नहीं था, ब्रेन ही नहीं था, बहुत इंटेलिजेंट थे वो, पाया गया कि उनके यहाँ है ही नहीं, ब्रेन ही नहीं है उनके, सच बात बता रहा हूँ। तो ये जो है, ये हम साइंस को बहुत समझते हैं, साइंस बहुत ग्रॉस है, मतलब बहुत क्योंकि आपको शायद पता नहीं, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, मेडिकल हिस्ट्री में जाओगे, तो ब्रेन को आज से लगभग 100 साल पहले ब्रेन को कूलिंग ऑर्गन माना जाता था। सारे साइंस के लोग जो है, जो मेडिकल के लोग हैं, वो ब्रेन को कूलिंग ऑर्गन मानते थे, कूलर मानते थे, एसी मानते थे। शरीर का एसी कहाँ है, ये है। अब जैसे आप मांग रहे हो कि बुद्धि, बुद्धि इससे होती है, बट ये गलत है, है ना। तो जो ये है इंटेलिजेंस है, और जो मन है, और जो अहंकार है, ये बहुत सटल है, ये सटल है, ये सूक्ष्म बॉडी है हमारी, तो इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, है ना। ये सटल है बहुत। अब मन कहाँ होता है फिर? बुद्धि तो यहाँ होती है, मन का, मन यहाँ हृदय में होता है। ये भी गलत है, मन हृदय में थोड़ा होता है। हृदय अलग है, मन अलग है, माइंड अलग चीज है। मन मतलब माइंड, मन का मतलब साइकोलॉजी। तो कई लोग जैसे कोई साइकोलॉजी मतलब साइकेट्रिक हो जाते हैं, तो कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है। तो दिमाग से तो लेना देना नहीं है उसका, वो तो माइंड है, मन है, वो तो मन का है, इसलिए इसको मनोचिकित्सक कहते हैं या साइकेट्रिक कहते हैं, साइकेट्रिस्ट। तो ये चीजें हमें समझना है कि साइंस जो है ना, ये बड़ी ग्रॉस है, और ये जो आध्यात्मिक साइंस है, ये सटल है, सूक्ष्म है। ये जैसे अब आपने कहा कि हमारे शरीर में जो है एक आत्मा है, तो सारे शरीर को प्रकाशित कर रही है। तो मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि हमारे शरीर में कितनी आत्माएं हैं? एक है, दो है, तीन है, या असंख्य है? आप हाथ खड़ा करिए, फिर मैं पूछूंगा। आप बताओ, असंख्य आत्माएं हैं? अच्छा, कैसे? हर सेल में आत्मा होती है। ये बात तो ठीक है कि हमारे शरीर में असंख्य आत्माएं हैं, लेकिन इसके कारण नहीं कि हर एक सेल में आत्मा होती है, लेकिन कई आत्माएं हैं जो उनका शरीर एक सेल के बराबर होता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं कई तरह के, और फिर कई छोटे छोटे हमारे कीटाणु भी होते हैं हमारे शरीर में, उनमें भी आत्मा होती है। तो हमारे शरीर में कई आत्माएं हैं, ये सच है। तो लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि वो कौन सी आत्मा है जो हमारे शरीर को प्रकाशित कर रही है? असंख्य आत्माओं में से हमारे शरीर की जो आत्मा है वो कैसे पता लगेगा? मतलब मनुष्य की आत्मा अलग होती है और कीटाणु की आत्मा अलग होती है, ऐसे है क्या? ये कह रहे हैं, हाँ। तो ये कर लो बात, मनुष्य की आत्मा अलग होती है, कीटाणु की आत्मा अलग होती है। अब क्या कह रहे हो आप, पहले सोचो। इसका मतलब आप कभी भी कीटाणु नहीं बने आज तक, या आगे कीटाणु नहीं बनोगे कभी भी, तो सारा ये तो तत्व भी खराब हो गया फिर तो। अभी तो भगवान कह रहे हैं कि जैसा आप भाव करोगे, जैसा स्मरण करोगे, उस तरह का शरीर मिल जाएगा आपको। अभी तो भगवान कह रहे हैं, तो आत्मा तो वही है, शरीर बदलते हैं ना। आत्मा में थोड़ा अंतर होता है, मनुष्य की आत्मा और कीटाणु की आत्मा में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अब हमें समझना ये है कि वो हमारा जो शरीर को व्याप्त कर रही है वो आत्मा कौन सी है, ये पॉइंट समझना है। उन असंख्य आत्मा से वो आत्मा कौन सी है? हैं? हाँ, जो इस शरीर से अटैच है, जो इस शरीर को अपना समझ रही है, वो आत्मा है, हमारी आत्मा है। समझ रहे हैं आप? ये आसक्ति का सारा खेल है। जैसे कैसे, जैसे अभी आपको समझ आएगा आम जीवन में भी कैसे। एक राजा था, राजा के पास एक समस्या आई। क्या समस्या आ गई? बच्चा एक, माँ दो। माँ एक हो, दो बच्चे हो तो समझ आती है बात। वो बच्चा एक, माँ दो, मतलब एक ही बच्चा है, दो माँ। वो कह रही है मेरा है, वो कह रही है मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब भगवान को राजा को समझ नहीं आ रहा क्या इसका निर्णय दे। तो एक दिन तो पोस्टपोन कर जाता है, दूसरे दिन जब आता है अपने राजगद्दी पे बैठता है, तो कहता है ठीक है, मैंने बहुत सोच विचार किया है, सोच विचार के मैं इसी निर्णय में पहुंचा हूं कि अब जो है ये बच्चे को बीच में से आधा काट दिया जाए, आधा भाग एक औरत को मिलेगा, आधा भाग एक औरत को मिलेगा। जो इधर खड़ी है उसको सिर वाला हिस्सा मिल जाएगा, जो इधर खड़ी है उसको पैरों वाला हिस्सा मिल जाएगा। वो जैसे अभी अपनी बोलना खत्म ही नहीं करता राजा, कि एक औरत कहती है महाराज मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसी को दे दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वो रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। अभी वो बोला ही नहीं, खत्म ही नहीं किया होता ये बात, राजा कहता है बच्चा इसको दे दो। समझ आ गई बात? नहीं आई, नहीं आई। यह है आसक्ति का खेल। एक ही बच्चा है, लेकिन वो जो आसक्त है उसने, उसकी जान ही निकल गई जब काटने की बात की, उसकी जान ही निकल गई। हाँ, जो भी है ध्यान से तत्व को समझो, प्रहलाद महाराज तत्व समझो, जो भी है वो उसको पकड़ लिया आपने, तत्व को नहीं पकड़ा, उसको पकड़ लिया। तत्व ये है, ये सब आसक्ति का खेल है। जो आत्मा हमारे शरीर से आसक्त है, इस शरीर को बचा रही है, इस शरीर के साथ चली जाएगी, जैसे ही ये शरीर खत्म वो भी चली जाएगी, और बाकी जो बैक्टीरिया है जैसे ही ये आत्मा उसको छोड़ती है इसी शरीर को खाना शुरू कर देते हैं, जो उनका निवास स्थान था उसी को खाना शुरू कर देते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है उनको। एक जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, आत्मा छोड़ देती है, तो उसमें कैसे कीड़े कैसे पड़ जाते हैं? कोई ऊपर से गिरते हैं क्या कीड़े? देखते हो ना, बदबू मारना शुरू कर देता है। नहीं, कहां से आते हैं? उसके अंदर ही तो होते हैं, कोई उसको खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो आत्मा उसको बचा रही थी वो भाग गई। समझ में आया बात? समझ में आ रही है प्रभु जी? जो आप कह रहे थे एक आत्मा सबको, शरीर को प्रकाशित करती है, ये सब आसक्ति का खेल है। वही आसक्ति हमें भगवान में डालनी है। यही आसक्ति जो यहाँ संसार में डाली हुई है, यही आसक्ति जब भगवान से हो जाएगी तो कोई चिंता ही नहीं है, अपने आप वही शरीर मिल जाएगा। जिसमें आसक्ति होती है वैसा शरीर मिल जाता है। यही भगवान बात कह रहे हैं, यही समझनी है हमें। और भगवान से हमें आसक्ति बढ़ानी है, उसी का हमें मौका मिला है, और भगवान से आसक्ति बढ़ेगी इसी से। भगवान के नाम का जप ध्यान से करें, भक्ति ध्यान से करें, धीरे धीरे श्रद्धा किसको नौ स्टेजेस याद है? प्रेम तक, श्रद्धा से प्रेम तक किसको याद है? नहीं, माता नहीं, कोई पिताजी बताए। पिताजी को कोई कोई याद करने का जिम्मेवारी नहीं दी गई क्या? किसी को भी याद नहीं है? तो इतने महान लोग बैठे, आप बताओ प्रभु जी। नहीं, सरोजी नगर से प्रभु जी नहीं, किसी को भी याद नहीं है। श्रद्धा आदो श्रद्धा तथा साधु संघ, किसी को याद नहीं है? रूप गोस्वामी बता रहे हैं, आपको याद है? बताओ बताओ बताओ, शाबाश बोलो। नहीं नहीं, आप नहीं, वो पीछे, आपको तो मना किया है पीछे, वो बोले, बोलो, माइक दो माइक दो माइक दो प्रभु जी, बोलो। शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम समझ ही नहीं रहे भक्ति क्या है। बताओ। नहीं नहीं नहीं, आप पॉइंट मिस कर गए। और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही सुषमा आर्या माता जी बताती है, और कोई भी नहीं बताता। क्या कारण है आपको पता है? बताओ। नृत्य के बाद रुचि, निष्ठा, वेरी गुड, भाव और प्रेम, यस वेरी गुड। तो ये है, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस श्रद्धा है हमारे में। अभी श्रद्धालु तो सब है, श्रद्धालु नहीं होते यहाँ क्यों आते? साधु संघ भी कर रहे हैं, भजन क्रिया भी हो रही है, लेकिन अगर भजन क्रिया हम ध्यान से नहीं करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। ये जीवन चला जाएगा ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि अनर्थ साथ जाएंगे। जो अनर्थ है हमारे अंदर अगले जन्म में वो साथ में जाएंगे। तो अगर भजन क्रिया हम तीव्र करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और निष्ठा पे आ जाएगी। निष्ठा पे आने के बाद फिर अनर्थ नहीं रहते। निष्ठा पे तो कम से कम आ जाना चाहिए हमें, इतना तो कम से कम हमें इस जीवन का उपयोग करना चाहिए। और निष्ठा के बाद फिर रुचि आएगी, रुचि के बाद आसक्ति। जब भगवान में आसक्ति हो जाएगी फिर यहाँ की आसक्ति खत्म, फिर नहीं आना पड़ेगा। भगवान में जब आसक्ति होगी फिर यहाँ नहीं आना पड़ेगा हमें, क्योंकि जहाँ आसक्त है वहाँ जाएंगे। सिंपल सिंपल, ये तो कोई ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं है, कोई बच्चा भी समझ सकता है। जहाँ हमारी आसक्ति है वहाँ जाते हैं। अभी यहाँ शक्ति थोड़ा है, अभी यहाँ तो आए हैं, चलो जी हर मंडे को आ गए घंटे के लिए। अभी किससे पूछे कि आपका घर कहाँ है? ओ जी वो आया जी, मेरा श्रीनिवासपुरी में। कहाँ घर है जी? उस सरोजिनी नगर में घर है जी। ओ घर तो ये है आपका? कोई बोलता नहीं है कि ये मेरा घर है, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं कहता। किससे पूछो कहाँ है जी आपका घर? कहाँ जी? घर तो हमारा ये है, लेकिन आसक्ति नहीं है अभी इसी घर में, आसक्ति वही पड़ी हुई है। तो इसीलिए हमें इसको बढ़ाना है, जब को तीव्र करना है, ताकि हमारा आसक्ति इस घर में हो जाए। छोड़ के जाए ना हम, जब आए फिर यही रहे हम दिन रात 24 घंटे। आती बात नहीं आती भाई, ये कैसे हो गया? घर तो घर होता है भैया, मंदिर मंदिर होता है, घर घर होता है। आप तो कंफ्यूज ही कर रहे हो, आप तो पूरा कंफ्यूज ही कर दिया प्रभु जी आज आपने, है ना? लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, बैक टू गॉड हेड, हमें अपने घर जाना है। गॉड हेड भगवान का घर हमारा घर है, वहां से हम यहाँ आए हैं, फॉरेन लैंड में आए हुए हम। भगवान के घर हमें वापिस जाना है, जो हमारा ओरिजिनल घर है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।